ओम शांति। योग किस किस का अच्छा लगा? अभी योग कर रहे थे, हाथ उठाएं जिनका अच्छा लगा। अच्छा, योग में बाबा के प्यार में मगन होना आता है माताओं को। बहनों के पास प्यार ज्यादा होता है भाइयों से। अब परमात्मा प्यार, उसमें मग्न स्थिति, तो आज इस पे ही सभी विचार करेंगे कि जिसे हम बिना जाने बहुत प्यार करते थे, सोचते थे वो एक बार मिल जाए, एक बार उसे देख लें बस, अब जब वो हमारे सम्मुख है, उससे अपने प्यार को कैसे बढ़ाएं? कौन बढ़ा सकते हैं? अब चिंतन शुरू करो, कौन बढ़ा सकते हैं इस प्यार को? बोलो। नहीं, किसका ये प्यार बहुत बढ़ता है? परमात्मा प्यार में मग्न कौन हो सकते हैं? एक तो जो अशरीरी हो, प्राप्तियों को बहुत स्मृति में रखें, और प्रैक्टिकल बात, जितना यहां से प्यार हटता जाएगा, ऊपर से प्यार जुड़ता जाएगा। देहधारियों में प्यार है सबका, और युगों से है। उसे हल्का करना, उसे कम करना, उससे मुक्त होना संभव है क्या? कठिन काम है। बोलो, प्रैक्टिकल उत्तर चाहिए। ऐसे नहीं कहते सब सहज है, बाबा के आगे जैसे कह देते थे ना, बिल्कुल सहज, हाथ उठा दिया, सदा खुश रहते हैं, बिल्कुल सदा रहते, बाहर जाते ही उनकी खुशी दिखाई देती थी। सब संबंधों से प्यार हल्का करना, कम करना, धीरे धीरे समाप्त कर देना, क्या प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए? आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, इस ड्रामा के ज्ञान की संपूर्ण स्मृति, जिसको बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र, तो मोह छूटता चलेगा, आत्मिक प्यार में बदलता चलेगा मोह, धीरे धीरे ये काम होगा, लेकिन इसकी शुरुआत करनी चाहिए, नहीं तो अंत में ये बात कष्ट देगी। अब जिससे प्यार होता है उसके लिए क्या किया जाता है? बोलो बोलो, ये तो सिंपल उत्तर है, चर्चा करेंगे अभी। उसके समान बनना होता है भाई लोग, जो वो कहता वही सत्य, उसको फॉलो करना है। बोलो बाबूजी, बोलो। सब संबंध उससे जुड़ जाते हैं, और बोलो हैं कुर्बानी, सब कुछ छोड़ सकते हैं उसके लिए। ये तो आजकल के अनुभव बहुतों के हैं ना, युवा वर्ग के यही अनुभव हैं। एक्टर ने फटी हुई पैंट पहन ली थी तो सब पहन रहे हैं। एक आया था बहुत साहूकार घर का लड़का भी, बहुत साहूकार, बिल्कुल घुटना पूरा बाहर। मैंने कहा भाई क्या हुआ, जल्दी में आ गए क्या, कपड़े नहीं लाए? हंसने लगा, भाई जी आप तो फिल्म नहीं देखते, ये फैशन है आजकल, पूरा घुटना बाहर। मैंने कहा हमारा पजामा जरा सा फट जाए तो 10 बार ध्यान जाता है, कोई देखेगा तो नहीं, लड़कियां भी पीछे नहीं। तो बाबा से हमारा प्यार है, अब इस पे सोच लेना है सभी को। तो जो वो वही हम फॉलो करेंगे, प्यार की निशानी। शुरू में बाबा कहा करते थे, जहां बाप रहता है वहीं तुम रहो, ये है प्यार की निशानी। उसके साथ रहना चाहते हैं ना, जिसे प्यार होता है उसकी हर बात मानी जाती है, कुर्बानी की भावना रहती है। तो हम अपने को चेक करेंगे। सेवादारी सभी भाई बहने यहाँ आए हैं ज्ञान सरोवर में, यहाँ से कुछ विशेष चीजें लेकर जाएंगे, सीख कर जाएंगे। दो अभ्यास मैं आपके ध्यान में दे रहा हूँ। पहले मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, और दूसरा विश्व कल्याणकारी हूँ। इन दोनों को बहुत बढ़ाएंगे। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही इनकी अनुभूति होती है। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, आत्मा को देखेंगे अपने को, और ये महसूस करते चलना, ये मस्तक मेरा सिंहासन है, मैं राजा हूँ, स्वयं की राजा, मन बुद्धि की राजा, इस देह की राजा। बहुत सुंदर अनुभव इससे होते रहेंगे, इससे भी तेजी से आगे बढ़ेगी, व्यर्थ छूटेगा। और दूसरा, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, इससे हमारी भावनाएं शुद्ध होंगी, और भावनाओं को शुद्ध करना बहुत बड़ी प्राप्ति है, सुखों का आधार है ये भी। तो ये दो प्रैक्टिस ज्ञान सरोवर में रहते हुए, कर्म करते हुए करना है। कुछ भाई बहने तो 4-5 दिन के लिए आए हैं, सभी यहाँ से ये पक्का करके जाएंगे, तो ये अनुभव आपकी यादगार बन जाएंगी, स्थिति को आगे बढ़ाने वाले हो जाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में, मैं अभी अभी 10 मिनट पहले हमें से लोग मिलने आते रहे, मैं सोच भी नहीं पाया क्लास क्या करूं आज। तो जब 6-10 हो गए, तो मैं अपनी डायरी खोली, निकली अव्यक्त मुरली। मैं सोचा था जो निकल जाएगा उस पे ही क्लास करेंगे। वो थी परमात्मा प्यार में मग्न होना। परमात्मा प्यार झूला है, इसमें बहुत सुख है। बहुत अच्छे बाबा के सब थे, जो परमात्मा प्यार में मगन है, माया उन पे वार करना तो छोड़ो, उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगी। परमात्मा प्यार ये झूला बहुत सुखदाई है, हम इस सुख को अनुभव करते चलें। तो परमात्मा प्यार हमको बहुत बढ़ाना है, और इस प्यार में बहुत कुछ प्राप्त करना है। पहले ही सुना देता हूँ, बाबा ने कहा, सवेरे ये परमात्मा प्यार जगाता है। सवेरे बाबा अपने पास बुलाता है रू ध्यान करने के लिए, माजून खिलाता है, शक्ति भरता है, सुनता है, हमारी बात सुनता है, वो वरदान देता है। तो ये परमात्मा प्यार है हमारा, हमारा उनसे बहुत प्यार है, उनका हमसे बहुत प्यार है। बाबा साकार में भी ये प्रश्न पूछा करते थे, आज मैं भी पूछ लेता हूँ, हमारा बाबा से ज्यादा प्यार या उसका हमसे? सबका ये एक ही उत्तर होता था तब भी, माँ बाप बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं। बच्चों का प्यार तो बढ़ता रहता है, माँ बाप का प्यार बढ़ता नहीं। 10 बच्चे भी हो ना, सबके लिए रहता है। एक परिवार मुझे अभी ऐसा भी देखने को मिला, जिसकी बाबा कहानी सुनाते हैं ठीक वैसा ही, कि 7 भाई थे, सब एक साथ रहते थे, उठ के गीता पढ़ते थे, एक जगह भोजन बनता था। मैं भी कोल्हापुर में गया था, आठ भाई वो भी सिंधी, सब एक साथ रहते हैं, फैक्ट्रियां हैं, काम धाम एक साथ है सबका। मैंने उन्हें बताया बाबा भी ये उदाहरण दिया करते थे, आप भी वैसे ही हैं, कोई झगड़ा नहीं है आपस में। तो ये प्यार बहुत बड़ी चीज है ना, कलयुग के अंत में आते आते इस प्यार में क्या समा गया, स्वार्थ और वासनाएं। लोगों ने वासनाओं को प्यार मान लिया, वो तो शत्रु है। प्यार तो बहुत बड़ी चीज है, प्यार में तो कुर्बानी होती है। जिसको आजकल के युवक प्यार मानते हैं, एक साल में अलग हो जाते हैं शादी करके, तो प्यार कहाँ हुआ? वासनाएं विकृति, वो प्यार नहीं है। सच्चा प्यार बाबा सिखाते हैं आकर, पहले आत्मा हो जाओ फिर मेरे से लगन लगाओ। बाबा से मिलने वाले अनुभव, बाबा से प्राप्त होने वाला सुख हमें प्यार में वृद्धि कराएगा। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही जो मेरे तो बहुत ख्यालों में है, आप सब भी ख्यालों में रखो उसको, अपने लक्ष्य में ले आओ। आने वाले समय में विपरीत परिस्थितियों में सेवा करनी पड़ेगी, और सेवा वही कर सकेंगे जो सर्व खजानों से भरपूर होंगे। तो अब समय है सर्व खजाने भरने का, और तब समय होगा बांटने का। बहुत सुंदर महावाक्य है, बहुत पहले बाबा ने कहा था, मुझे बात याद रही। अब समय है तपस्या का, और एक समय आएगा सेवा ही सेवा होगी। तब तुम तपस्या नहीं कर सकोगे, तब सेवा से ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। अब जैसे मधुबन में आजकल नीचे के ग्रुप बहुत आते रहते हैं, रोज चार चार हजार आए, कभी 5,000 भी आए लास्ट ग्रुप में। बाबा के कमरे में अगर कोई बैठना चाहे मौका ही नहीं, लोग आ रहे हैं, एक एक मिनट बैठ रहे, उठ के जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहीं भीड़ ही भीड़ है, सारा दिन भीड़ है। सवेरे भी इतने हो जाते हैं कि सब जल्दी जल्दी उठो, ये होता रहता है। और जब हम थे वहां कोई आता ही नहीं था, हम ही अकेले बैठे रहते थे लंबा समय, क्योंकि शुरू में बाबा के कमरे में वो वेंटिलेशन रूम नहीं बना था, वो बाबा का कमरा था केवल, यहाँ बाबा रहे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं वहां जाके बैठने लगा डर से, कोई उठा न दे मुझे, कोई कुछ कह न दे। लेकिन फिर मुझे देख के एक संतरी दादी होती थी जो संदेशी भी थी, बाबा के जो भतीजे थे विश्व किशोर दादा, उनकी युगल थी वो बैठने लगी। फिर हम दो हो गए तो मुझे मेरा डर खत्म हो गया, अब तो कोई कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि वो तो यक्की वैसे भी मालिक थी, पुराने थे और बाबा के बिल्कुल साथ, बाबा को संभालने वाली, जैसे ब्राह्मणियां होती हैं, लच्छू बहन जैसे थी वैसे वो भी थी। तो अब समय है खजाने जमा करने का, और अब समय आ रहा है, पहुंच रहा है देने का। हमें शांति भी देनी होगी, शक्तियां भी देनी होगी। मेरे सामने तो क्लियर विजन है भविष्य की, 2025 तक की क्लियर विजन है। जल्दी ही वो समय आ जाएगा जब ये बाबा के तीनों स्थान महान तीर्थ बन जाएंगे। आज ज्ञान सरोवर में मुझे ये कहने का मौका है कि ज्ञान सरोवर की अच्छी आत्माएं जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, बहुत हैं यहाँ, उन्हें चाहिए इस स्थान को महान तीर्थ बनाने के लिए आप संपूर्ण योगदान करें। तपस्या, दो ही बातें करनी है, तपस्या और व्यर्थ से मुक्ति। अगर यहाँ के 25 अच्छे भाई भी, बहने तो बहुत कम है, 25 तपस्वी भाई ये काम करने लगे तो ये श्रेष्ठ स्थान भी महान तीर्थ भी है। यहाँ के वाइब्रेशंस भी बहुत बहुत आकर्षक हैं, जबरदस्त हैं, अनुभव होता है। आप सब आए हैं, हम तो यहाँ रहते हैं, हमें पता चलता है। पांडव भवन के पहला नंबर, दूसरा नंबर यहाँ बिल्कुल समान। बाबा ने इस भूमि को वरदान दिए हुए हैं बहुत सारे, इस पर बाबा की दृष्टि रहती है। जब से ज्ञान सरोवर बना था, हमारी यज्ञ की सेवाएं बहुत तेजी से वृद्धि को पाई हैं। बहुत सारे वीआईपी बाबा के बच्चे बने हैं, बहुत सारे सेंटर भरपूर हुए हैं यहाँ के कारण। तो इस स्थान को महान तीर्थ बनना ही है। जो इसमें योगदान करेंगे, अब ध्यान से सुन लें, जो अच्छे तपस्वी हैं, मैपन के त्यागी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को दिव्यता से भरा है, जो इस स्थान को महान तीर्थ बनाने में अब कड़ी मेहनत करेंगे, वही आत्माएं महान तीर्थ बनते ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेंगी। उनके द्वारा ही आत्माओं को, आने वालों को अनेक सुंदर अनुभव होंगे। आने वाले इन्हें अपने इस देव देवी पूर्वज स्वीकार कर लेंगे। तो बहुत अच्छा अभ्यास करना है सभी को। कई नए भाई भी बहुत अच्छे योगी हैं, तपस्वी हैं, पवित्र आत्माएं हैं। सभी किसी को न देखकर, किसी की व्यर्थ बातें न सुनते हुए, क्योंकि सुनने को बहुत आती है ना, कोई कहेगा चले हैं योगी बनने, कल का तो आया छोकरा है, बनेगा योगी, अभी तो दुनिया देखी नहीं, ये सब नहीं। कौन क्या कहता है उन्हीं के पास रहने दो, उनके शब्द हमारे कानों में गूंजने चाहिए, बाबा के शब्द। तो सभी अब ये कड़ी मेहनत करेंगे, बाबा से हमारा प्यार है। तो पहला प्यार किससे होगा? पहला बोलो, नहीं बाबा से प्यार तो पढ़ाई से प्यार, अर्जुन भाई दूसरा यज्ञ से प्यार, बहुत इम्पोर्टेंट चीज। तीसरा, अब माताएं बहनें बताएंगी, तीसरा परिवार से प्यार, चौथा भी कुछ है सेवाओं से, वो यज्ञ हो गया। लेकिन मुझे एक बात और जोड़नी, वो पहला नंबर अपने से भी प्यार। हम भी बहुत अच्छे हैं, जिनको भगवान ने स्वीकार कर लिया अपनी सेवाओं के लिए, जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया उसकी सेवाओं के लिए, उसकी दृष्टि उन आत्माओं पर सदा ही रहती है। अपने से प्यार और अपने पुरुषार्थ से प्यार, अपनी श्रेष्ठ स्थिति से प्यार, अपने सर्व खजानों से प्यार। खजानों से प्यार रहता है ना, माताओं को अनुभव है ना, ज्वेलरी जो अच्छी है कैसे संभाल के, पहुंच धो के फिर बंद करके रख देते हैं, केवल देखते हैं। पहनने का तो आजकल जमाना नहीं है, पहनेंगे तो चोर लग जाएंगे, तो साफ सूफ करके फिर रख देते, वाह इतना अच्छा माल है। हमारे पास भी बहुत खजाने हैं, लोग भी उन्हें समझते हैं यही खजाने हैं, शांति, खुशी, प्रेम। विशेष रूप से आजकल के समय में प्रेम बहुत बड़ा खजाना है, शक्तियां बहुत बड़ा खजाना है, जिससे हम हर चीज का सामना कर सके। सामना करने का अर्थ होता है जीवन में कुछ भी आए वो हमारी स्थिति को बिगाड़े नहीं, यह है सामना करने की शक्ति। कुछ भी हो, संबंधी कुछ बोले, बच्चों की स्थिति ऊपर नीचे हो, लेकिन हमारी स्थिति न बिगड़े और सभी इस गुह्य रहस्य पर ध्यान देंगे, ध्यान से सुन लेंगे। माताएं विशेष, आपके परिवार में कुछ गड़बड़ हो रही है, बच्चों की तरफ कुछ गड़बड़ हो रही है, काम धंधों में गड़बड़ हो रही है, यदि आप अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखेंगे तो स्थिति के वाइब्रेशंस सब कुछ जल्दी ही ठीक कर देंगे। याद रखना ये बात, कुछ घरों में ऊपर नीचे हो जाए और आप चिंतित, आप परेशान, आपको नींद नहीं आती, आप बहुत सोच रहे हैं अब क्या होगा, तो आपके कमजोर वाइब्रेशंस परिस्थितियों को बढ़ा देंगे। सबको याद रखना है बहुत अच्छी तरह, जहां एक भी आत्मा शक्तिशाली हो वहां परिस्थितियां आएंगी तो जरूर, लेकिन ठहर नहीं सकेंगी, उनको विदाई लेनी ही होगी। तो परमात्म प्यार, अब हम इसके आधार पर जीवन के कुछ नियम बनाएं। योग में आपको बहुत मदद मिलेगी, जहां बाबा रहता है वहीं मुझे रहना है, चाहे परम धाम में चाहे सूक्ष्म लोक में। उसकी मुरली जो ज्ञान का भंडार हमें देती है, जो रोज अमृत पान कराती है, जो मुर्दों में जान डालती है, उसको उतने ही प्यार से ग्रहण करना, केवल सुनना नहीं। कई लोग सोचते हैं पढ़ ली बस बहुत हो गया, पढ़ तो ली, दो बार पढ़ ली, उससे काम नहीं चलेगा। क्लास में इस सुख को अनुभव करना, ऐसा लगे कि अमृत पान हो रहा है। सब समझते हैं ना, इस शब्द ही बहुत सुंदर है, अमृत पान हो रहा है। इस सुखद फीलिंग को रोज करना, इसकी बहुत आवश्यकता है। मुरली से प्यार का यह अर्थ नहीं कि मुरली को लेके जेब में रख लिया, उसे बार बार देखते रहे, ये प्यार है, चूमते रहे उसे, बाबा कहते थे ये बात, किसी अति प्रियजन का पत्र आता था, बाबा ही सुनाते थे, तो उसको आंखों पे रख लेते थे। मुरली भी तुमको आंखों पे रख लेनी चाहिए, है तो ये भी प्यार, पर केवल आंखों पे ही रखें, बुद्धि में समाए नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो प्यार भी बहुत हो हमारा, हम इस कागज की भी तो इंसल्ट नहीं कर सकते ना, ये तो नहीं ना मुरली का कागज फाड़ के टोली रख के खा लेंगे, कोई नहीं खाता ना, होगा ही नहीं ये हमसे। तो वो हमारा सम्मान भी है इन महावाक्यों के लिए, हमारा मुरली से प्यार, उसकी पढ़ाई से प्यार, क्योंकि ये पढ़ाई हमारी बुद्धि को डिविनाइज करती है, दिव्य बनाती है, इसलिए वो पढ़ाई से बहुत प्यार है। कल मुझे किसी एक कन्या ने पूछा, आज सवेरे यहां, बहुत पढ़ी लिखी, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, अच्छा स्पीकर जो दूसरों को प्रेरणा दे सके, तो मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूं, क्या करूं? मैंने उसको उत्तर दिए, क्या किताबें पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा? बोलो, बिल्कुल नहीं। एक प्रोफेसर है साइकोलॉजी का, उसको संसार की हर तरह के मनोविज्ञान का ज्ञान है, पर उसे बोलना ही नहीं आता, उसको पता ही नहीं कि प्रैक्टिकल जीवन में मनोविज्ञान के कौन से सिद्धांत काम आएंगे, वो बताना है लोगों को। मैंने देखा कई बड़े बड़े प्रोफेसर भाषण करते हैं, भाषण को ऐसा बना देते हैं कि सुनने वालों को समझ में नहीं आता कि प्रोफेसर साहब कहना क्या चाहते हैं। हमारी भाषण करने की अप्रोच बिल्कुल प्रैक्टिकल हो, मनुष्यों के जीवन को टच करने वाली, वो है मोटिवेशनल स्पीच, जिससे सबको प्रेरणा मिल जाए, निराशा खत्म हो जाए, एक ऊंचे लक्ष्य को पाने के लिए मनुष्य तत्पर हो जाए। तो मैंने उसे कहा 8 घंटा योग। मैंने कहा कर सकती हो? कि हाँ। पूछा कर्म करते ही करना है बैठ के? मैंने कहा नहीं, बैठो एक डेढ़ घंटा दो घंटा, बाकी कर्म में करना, मैं करूंगी। और बाबा की मुरलियों की गहन स्टडी, अव्यक्त मुरलियों की, साकार रोज सुनो, एक अव्यक्त मुरली रोज पढ़ो, उसमें बहुत गुह्यताएं हैं। और क्या होगा इन सब से? बुद्धि बहुत स्वच्छ होगी। बुद्धि स्वच्छ होने से बुद्धि में जो विजडम भरा हुआ है, विवेक, वो जागृत हो जाएगा, आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबा का ज्ञान मुरली बहुत जबरदस्त चीज हमें मिली है। शास्त्रों के ज्ञान से यदि इसकी तुलना करें तो शास्त्रों का ज्ञान इन महावाक्यों के सामने 5% से ज्यादा नहीं ठहरेगा। है या नहीं? आप में से जिसने पढ़े हों उनको पता चलता होगा। शास्त्रों में तो बड़ा कन्फ्यूजन है, कितने आचार्यों ने अलग अलग बातें लिखी हैं, भेद है उनमें, विपरीत विरोधाभास है बहुत ज्यादा, बहुतों को पता ही नहीं चलता कि सत्य क्या है। कहानियां ऐसी लिख दी कि पढ़ के दिमाग चकरा जाए, फलाने ऋषि ने इतने हजार साल तपस्या की, यहां 100 साल जीना भी मुश्किल हो रहा है, लाखों साल, किसी किसी के लिए तो लिख दिया अरब साल तक तपस्या की। मैं सोचा तब अरब शब्द का अर्थ कुछ और होता होगा, जैसे अरबी भाषा है ना, अब कोई अरबी भाषा को अरब से जोड़ने लगे तो काम बिगड़ जाएगा ना। शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न समय पर बदलते रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में उसी शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं। महाराष्ट्र वाले बैठे हैं ना, आप लोग नमक को क्या कहते हैं? मीठ। सुना क्या कहते हैं? मीठ। मीठ नहीं, अभी किसी लिखने वाले से ठे की जगह टे लिखा जाए प्रिंटिंग में, मीठ कहेंगे। महाराष्ट्री बहुत मीठ खाते हैं, खाते हैं बेचारे नमक। गुजराती में उसे कहते हैं मीठू। अब कोई कहेगा मीठू तो मीठा होता है, चीनी शक्कर ये, तो अलग अलग लैंग्वेज में एक ही चीज के अलग अलग भाव, अलग अलग अर्थ। इसलिए शास्त्रों में गड़बड़ बहुत हो गई। बहुत सारे आचार्य साउथ के थे, साउथ की भाषाएं अलग हैं, संस्कृत में लिखा इसलिए उन्होंने, संस्कृत के भाव बदलते रहते हैं, अगर बिंदी भी प्रिंटिंग से मिस हो गई तो भाव बदल जाएगा, गड़बड़ हो गई बहुत सारी। उसके आधार पे यदि बाबा की सिंपल मुरली को देखें, बिल्कुल घरेलू, अपने बच्चों से बात करता है, कितना मजा आता है। शास्त्र पढ़ने में, भागवत सुनने में लोगों को उतना आनंद नहीं आएगा, उससे 50 गुना ज्यादा आनंद रोज मुरली हमें देती है, इससे प्यार और इसकी उसी तरह की अनुभूति। अब मैं आपका ध्यान दिलाऊं, बाबा ने कहा बाबा से प्यार है तो परिवार से भी प्यार होना चाहिए, ये थोड़ी कठिन बात है, होना तो चाहिए पर होता नहीं है। दूर वालों से तो ज्यादा होता है, समीप वालों से बोलो थोड़ी गड़बड़ रहती है। इस प्यार को अगर हमें बढ़ाना है, एक ही संकल्प बहुत है, बोलो कौन सा भाई बताएंगे? अमित, मेजर साहब? नहीं, परिवार से प्यार। हाँ, तो ऐसी ऐसी भावनाएं अपने को देना चाहिए कि ये परिवार जो हमारा है, ये संसार की चुनी हुई आत्माओं का परिवार है, ये सृष्टि की महान आत्माओं का परिवार है, ये उनका परिवार है जिन्हें भगवान बहुत प्यार करता है, इसलिए ये परिवार महान आत्माओं का परिवार है। ये दृष्टि बदल दो, सब अच्छा लगने लगेगा। बाकी हम जन्म जन्म साथ रहे हैं तो कुछ गड़बड़ भी तो की है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं की है। साथ रहने वालों ने द्वापर कलयुग में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ कर दी, तो वो यहाँ सामने आ जाता है, उससे हमें वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। वर्तमान कुछ नहीं होता, पूर्व जन्मों का होता है वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। हम कहते हैं बाबा तो बहुत अच्छा है, पर ये जो उसका परिवार है ना, ये बड़ा खिटपिट वाला है। अगर ऐसी दृष्टि भी हमारी रहेगी, अवगुणी दृष्टि हुई ना, तो हमारा योग टूटता ही रहेगा। योगी वही बन सकते हैं जिनके चित्त में सबके लिए निर्मल प्यार हो, दृष्टि बहुत श्रेष्ठ हो। ये सब महान आत्माएं हैं, नहीं तो क्या होता है, अपने साथी के कारण कई लोग अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर पाते। कल मैं एक छोटे से ग्रुप में क्लास करा रहा तो कहा कि मैंने यही बात कही, तो उसने कहा बाद में आके मेरे से मिला भाई, और मेरे साथ जो भाई रहता है ना वो बहुत बाह्यमुखी, मैं बहुत अंतर्मुखी, हम दोनों की बनती नहीं, इसलिए डिस्टर्बेंस रहता है, क्या करूं। अब देखिए इरादा बहुत अच्छा कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो, लेकिन पास ही सोने वाला बाह्यमुखी है, वो ज्यादा बोलता है, इधर उधर की बातें करता है, नेट पे ज्यादा रहता है, फोन ज्यादा चलाता है, तो सोने वालों को दिक्कत होती है, कई फोन यूज करने वालों को पता ही नहीं होता कि दूसरों को सोना भी है, कहा तुम्हें सोना हो सो जाओ, मेरा तो फोन आ रहा है, मैं तो फोन करूंगी। इससे बचना चाहिए। परिवारों में प्यार बढ़ाना है तो एक दूसरे का ध्यान भी रखना होगा। कोई सोया है गहरी नींद, उसने पहरा दिया है सारी रात को, अब वो दिन में कमरे में रेस्ट कर रहा है, आप जाएं खटपट करें कैसा लगेगा? आप तो कहेंगे दिन है ना, हम दिन में भी बातचीत न करें तो कब करेंगे, इसका तो रोज का काम है सोना ही सोना। लेकिन अगर हम दूसरे का ध्यान रखेंगे तो दूसरे हमारा भी ध्यान रखेंगे, और इस तरह परिवार में प्यार का माहौल बनेगा। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस महान परिवार में प्यार के वाइब्रेशंस भरें। क्या करें उसके लिए? देखो आप सब सेवाओं में भी आती हैं माताएं, एक एक कमरे में कई कई रहती है ना, अब एक एक को एक एक कमरा तो नहीं मिलेगा, हो सकता आप अपने घरों में बहुत खुली स्वतंत्रता से अलग अलग कमरे में एक एक माता को दो दो कमरे भी हों, रहती हों। अब यहाँ आप एक एक में पांच पांच आठ आठ रहती हैं, कोई कैसी होगी कोई कैसी होगी, माताएं खुश रहती है या सोचती है कैसे लोग आ गए यहाँ सेवा करने, बोलो माताओं का क्या हाल है? होता तो होगा संकल्प, कैसे कैसे आ गए, नहाने में भी एक घंटा लगाते हैं, बाथरूम खाली नहीं करते हैं, सबको ध्यान रखना है एक दूसरे का। मुझे याद है बहुत साल पहले दादी प्रकाशमणि पांडव भवन था केवल, टीचर्स का एक ग्रुप आया शिविर के लिए, तब 200-250 ही आते थे, लेक्चरार थी, मैं दादी के पास बाहर ही खड़ा था आंगन में, पांच छह लेक्चरार आ गई, दादी से बात करने लगी, उन्हें पता लगा यही चीफ है, दादी ने प्यार से उनको कहा भाई आप लोग अपने घर में तो अलग अलग रहते हैं, यहाँ तो हमने आपको चार चार पांच पांच एक एक कमरे में रख दिया है, आपको दिक्कत होती होगी। तो देखो बुद्धिमान बहनों का उत्तर, उन्होंने दादी को कहा नहीं दादी हम तो अलग अलग बिखरे हुए थे, आपने हम सबको मिला के एक कर दिया। सुंदर उत्तर है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई, जो पढ़े लिखी बहने हैं देखो किस तरह सोचती हैं। तो हम सब एक दूसरे के साथ रहना सीखें, एडजस्टमेंट हो, कुछ हम अपने को चेंज करें कुछ दूसरे को सिखा दें, न गुस्सा हो न कुछ व्यर्थ की बातें हो, पुरुषार्थ अच्छा चले तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा। इस परिवार में पुनः प्यार के वाइब्रेशंस क्रिएट करना हम सब की जिम्मेदारी है। जैसे कई लोग कहते हैं कि आजकल नई कन्याएं, पढ़ी लिखी कन्याएं समर्पित नहीं होती, बहुत इनको कलयुग का आकर्षण है। मैं कहता हूं नहीं, तुम अपना आकर्षण बढ़ाओ, हजारों कन्याएं आ जाएंगी आपके पास। बस आगे नहीं कहूंगा ज्यादा, क्योंकि हमारी प्राइवेट बात है। तो हमें अपने इस दैवी महान महान आत्माओं के परिवार में जो थोड़ी बहुत प्यार की कमी है, थोड़ी बहुत ही है, बहुत तो है, उसको बढ़ाना है। एक दूसरे को सम्मान देना। कोई गरीब भी हमारे पास आया है ना, लेकिन कई गरीब बहुत महान होते हैं, उनके पास पैसा ही तो नहीं है, वो वन ठन के ही तो नहीं रहते, पर बहुत त्याग उनके पास होता है, बाबा के लिए बहुत प्यार की भावना रहती है, उसके यज्ञ के लिए मर मिटने की इच्छा होती है। उनको हम सम्मान दें, रिजेक्ट न करें। संगठन में ये बहुत जरूरी है कि हम किसी को भी रिजेक्ट न करें। बाबा उदाहरण दिया करते थे, जब हमारा परिवार छोटा था और बाबा हमसे बहुत मिलते थे मधुबन में, पर्सनली कहते थे ये तुम्हारा किला है, एक भी ईंट कमजोर न हो, एक ईंट कमजोर होगी किले की दुश्मन पता कर लेगा, उसी को निकालेगा पहले और सारे किले को नष्ट कर डालेगा। एक कमजोर ईंट पूरे किले को कमजोर कर सकती है। तो हम अपने संगठनों में इस बात का ध्यान दें कि हम किसी को भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। पसंद है, समझते हैं ना रिजेक्ट करना, सभी आने वाले हमारी पसंद के तो नहीं होंगे ना। तो जैसे बाबा ने किया था, हरेक के टैलेंट को यूज कर लिया, हरेक में जो खूबियां हैं उसका यूज कर लिया, तो हमारा संगठन पावरफुल हो गया। मैं आपको उदाहरण दे दूं, आप तो नहीं जानते, एक अर्जुन भाई रहते थे बाबा के यज्ञ में, शुरू से बुद्धि उनको बहुत कम थी, शुरू में ही उनके परिवार वाले बाबा को दे गए थे कि बाबा इसका खर्च भी हम देंगे, आप इसे संभाल लो, अपने पास रख लो। बाबा ने रख लिया, उसको बुद्धि नहीं, वो कुछ सीख नहीं सकता, बाबा ने चैलेंज किया हुआ था, कोई अगर इसको 100 तक की गिनती सिखा दे तो बाबा चांदी का गिलास देंगे उसे इनाम। उन दिनों चांदी के गिलास का महत्व था, कोई नहीं सिखा पाया, 20 के बाद जाते वो 21 के बाद 24 करता था, फिर 28 करता था, उसके आगे आता नहीं था। मेरे को दे दिया फिर उसको दादी ने सेवा में कि इसको तुम संभालो। बाबा ने क्या किया था, उसको पुलिस की ड्रेस पहना दी, टोपी, उसको सलूट मारना सिखा दिया, और बस बाबा बाहर निकले वो बाकायदे सलूट मारे, गेट पर बैठा दिया, आने वाले लोग देखते थे भाई पुलिस मैन इनका पहरा दे रहा है, यूज कर लिया उसको। अब मुझे दे दिया फिर अव्यक्त होने के बाद, तो मुझे भी यूज करना था उसको, मैंने उसे 2-4 काम सिखा दिए, अंगीठी जलाना, चूल्हा जला के देना मुझे, सारे बर्तन किचन में रख देना, धुलाई आदि कर लेना। गुण ये था कि जो चीज उसने सीख ली उस काम को परफेक्टली करेगा, कोई शिकायत नहीं हो सकती। मैं उसे कहा हुआ था 3:30 बजे दोपहर में, इतना दूध इतना पानी डाल के चाय के लिए उबाल देना, चाय चीनी थर्मस रख देना, फिर मुझे उठाने आना। ठीक 3:30 बजे मुझे उठाने आता था, जोर से, सूरज भाई उठो, दूध पानी उबल गया है, चीनी पत्ती डालो, चाय बना दो, मैं आता बिल्कुल एक्यूरेट। अब 3:30 बजे कैसे पता चले उसे, घड़ी नहीं देख सकता था, मैंने सिखा दिया था ये जो छोटी सुई है ना 3 के आगे को होगी और बड़ी यहाँ होगी नीचे, तब उठाना। एक्यूरेट टाइम पर आता था रोज। तो इससे क्या हुआ, उसका भाग्य बन गया, हमें बहुत मदद मिल गई, मेरा आधा काम पूरा कर देता था वो, तो फायदा ही फायदा। तो हम सभी संगठन में प्यार का माहौल पैदा करेंगे और बाबा को अपने प्यार की रस्सियों में बांधेंगे, तो बाबा हमारे लिए सब कुछ करेगा। ओम शांति।